بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور آج انداز جہاں میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے تناظر میں گفتگو ہوگی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir، اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 66واں سالانہ اجلاس منگل 20 ستمبر کو شروع ہو گیا۔ اجلاس میں شرکت کے لیے دنیا کے 193 ملکوں کے سربراہان مملکت، صدور، وزرائے اعظم اور نمائندے نیو یارک میں موجود ہیں۔ اکثر ملکوں کی قیادت ان کے صدور اور وزرائے اعظم کر رہے ہیں، اور بعض ملکوں کے وفود کی قیادت ان ملکوں کے وزرائے خارجہ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کا واحد ادارہ ہے جہاں دنیا کے تمام ملکوں کی نمائندگی پائی جاتی ہے، اور اس ادارے کے فیصلے اور قراردادیں اکثریت آرا سے پاس ہوتی ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک جنرل اسمبلی عالمی جمہوریت کی علامت ہے۔ مگر اس کی قراردادوں اور فیصلوں پر عمل درآمد کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اور اس ادارے پر سلامتی کونسل کو فوقیت حاصل ہے، جہاں دنیا کے 5 بڑے ملکوں کی اجارہ داری ہے اور انہیں ویٹو پاور حاصل ہے۔ اور اقوام متحدہ کی تاریخ شاہد ہے کہ بڑی طاقتوں نے ویٹو پاور کا استعمال ہمیشہ کمزور اور مظلوم اقوام کی حق کشی کے لیے کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں اس وقت بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اندرابی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اندرابی صاحب، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 66واں سربراہی اجلاس شروع ہو گیا ہے، جنرل اسمبلی کے اجلاس کی اہمیت کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تھیری اگر آپ دیکھیں تو اہمیت تو اس کی ہے، اس لیے کہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کے ذمہ دار حضرات، جیسے آپ نے فرمایا صدور، وزیر اعظم یا جو بھی ہو، یعنی ذمہ دار حضرات یہاں پہ ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں اور تقریریں ہوتی ہیں، مسائل بیان ہوتے ہیں، اس وقت دنیا میں کیا مسائل درپیش ہیں لوگوں کو، ان کا ذکر ہوتا ہے اور ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں۔ تو لہذا ایک اعتبار سے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن اگر ان پریکٹس آپ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ عملاً کیا ہو سکا ہے، کیا ہوا ہے اقوام متحدہ کے ان تمام ان سالوں میں، تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے اس سے، بس وہاں لوگ آئے، تقریریں کی اور معاملہ ختم ہوا، یعنی اس کی کوئی امپیکٹ اس کی نہیں رہتی، اس کی کوئی یعنی کوئی دنیا میں جو چیزیں تبدیل ہونی چاہیے، جو چیزیں حل ہونی چاہیے، وہ ایسی ویسی ایسی کی ایسی رہتی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی اس اجلاس سے واقع نہیں ہوتی، اس اجلاس سے کسی پروسیس کا آغاز نہیں ہوتا۔ تو یہ کہنا شاید بالکل بجا ہوگا کہ اس کا کوئی یعنی جہاں تک عملاً اس کی کارکردگی کا تعلق ہے، تو یہ اجلاس جو ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ لوگ وہاں ملیں اور تقریریں کریں اور بس معاملہ وہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ میری گزارش ہے۔
جی اندرابی صاحب، جنرل اسمبلی کے موجودہ اجلاس کے ایجنڈے میں کن اہم موضوعات کو رکھا گیا ہے؟
मैंने ये सारी चीज़ें तो नहीं देखी हैं कि किन मौजूआत को रखा गया है, लेकिन मेरी इंटरेस्ट खुसूसन जिस चीज़ की तरफ रही है वो फ़लस्तीन का मसला है,
जी
इसलिए कि फ़लस्तीन की जो अथॉरिटी है, फ़लस्तीन अथॉरिटी इस वक्त जो है, उन्होंने ये बिल्कुल तहिया कर रखा है कि वो इस बार फ़लस्तीन की स्टेटहुड का जो बिल है, उसकी जो तजवीज़ है, तो वो अकवाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली में रखेंगे, और ये परसों होने वाला है, जुमे को वो
जी
रखेंगे, और ये बात उन्होंने बिल्कुल अब वाजह तौर पे कही है। अब इस बात पे काफ़ी ले दे हो रही है, इस बात पे अमेरिका ने कहा है कि वो वीटो करेगा, और इसराइल ने भी अपनी बहुत ज़्यादा इसकी तरफ मुखालफत दिखाई है, लेकिन गरची ये बजाय खुद यहाँ हमारा मौजू नहीं है, लेकिन मैं इस बारे में ये गुजारिश करूँगा, ज़रा ज़मनन ये बात करनी ज़रूरी है कि इसको जो मसला बनाया जा रहा है, ये फिल हकीकत ऐसा मसला नहीं है, यानी फलस्तीन की रियासत की बिल वहाँ पे इसकी करारदाद अक़वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली में पेश होना, ये उतना बड़ा कोई मसला नहीं है मेरे नज़दीक। तो इसमें एक अहम जो इससे एक नतीजा सामने आएगा, वो एक ज़रा एक वहाँ पे एक सफ आरई होगी, ये मालूम पड़ेगा कि कौन किस साइड पे है, लेकिन बजाय खुद फ़लस्तीन के लिए और फ़लस्तीन के कॉज के लिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये बात जो है वो काफ़ी मीडिया में भी आई है, लोगों ने इस पे तबसरा किया है, इस पे सियासी मुफक्किरीन ने इस पे कुछ अच्छी तरह इस पे रोशनी डाली है कि ये करारदाद फ़लस्तीन के कॉज की कोई बड़ी खिदमत नहीं है, शायद इससे कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, मुमकिन है कोई नुकसान ही हो, तो
जी
लिहाजा ये सबसे बड़ा एजेंडा आइटम है वहाँ पर, और इसकी तरफ बहुत ज़्यादा मेरी भी हर किसी की तवज्जो अभी लगी हुई हो, जैसा कि मैंने कहा ये परसों वहाँ पे जो है वो पेश होने वाली है।
जी अंद्राबी साहब, जनरल असेंबली को अगर देखा जाए तो बहरहाल इस लिहाज से ये
जी
अक्वामे मुत्तहदा का अहम तरीन इदारा कहा जा सकता है कि इसमें दुनिया के तमाम मुल्कों की नुमाइंदगी होती है और साल में एक बार दुनिया के तमाम मुल्कों के रहबरान, लीडरान, आला सती वफूद, उन मुल्कों के सुदूर और वज़राए आज़म यहाँ पर जमा होते हैं। इसके सारे फैसले और तमाम करारदादें अक्सरियत आरा से पास होती हैं, यानी जमहूरियत इस इदारे में पाई जाती है। लेकिन इस इदारे को सानवी हैसियत दी गई और वो इदारा जहां पर पांच बड़े मुल्कों की इजारादारी है, उन्हें वीटो पावर हासिल है और वहां जमहूरियत कुशी की जाती है, उसको इस पर फौकियत दी गई। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
ये तो इसको आप एक कंट्रोल्ड जमहूरियत कह सकते हैं,
जी
एक ऐसी जमहूरियत जिस पर आपका फुल कंट्रोल हो। उससे होता यह है कि जमहूरी प्रोसेस में जो लोग शरीक होते हैं
जी
वो अपने अंदर की भिड़ास तो निकालते हैं, वो समझते हैं कि सब लोग यहाँ पे एक जैसे हैं, एक वोट एक मुल्क का एक वोट है, और अक्सरियत आरा से फैसले होते हैं, और वो समझते हैं कि हमने अपनी बात कही है और कोई करारदाद मंजूर हुई है। लेकिन जैसा कि आपने खुद इस बात की तरफ इशारा किया कि ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो किसी भी चीज़ को वीटो कर देती है, और वीटो के पीछे कोई कोई ज़रूरी नहीं कोई दलील हो, वीटो तो पांच रियासतों में से किसी रियासत का अपना एक फैसला होता है, उस फैसले का ज़रूरी नहीं कोई मेरिट हो, लेकिन बस वो एक फैसला उनका है, उनकी इंटरेस्ट है, उनकी मफाद है, उनका मफाद है, तो वो उसको वीटो करते हैं। तो उस एतबार से ये कोई जमहूरियत नहीं हुई, यानी जो कंट्रोल की जाती हो, तो लिहाजा ये सारी जमहूरियत वहाँ पे न्यूट्रलाइज होती है। अब देखना ये है, ये बात भी अक़वामे मुत्तहदा में अभी डिस्कस होगी कि अभी जो कुछ सालों से जो रिफॉर्म का जो एक रिफॉर्म की जो बहस चल रही है, तो अब देखते हैं कि उस बहस के नतीजे में क्या क्या निकलेगा क्या होगा, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है, मेरी ये गुजारिश है कि अक़्वाम मुत्तहिदा जो है एक 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 ख़ास सियासी हकीकत का की एक निशानदेही कर रहा है। ये वो सियासी हकीकत है जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद दुनिया में मौज वजूद में आई। अब ये सियासी हकीकत जो है तब्दील हो रही है। अक़्वाम मुत्तहिदा जिस हकीकत पर बना है, जिस हकीकत की निशानदेही कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है, वो हकीकत सिरे से बदल रही है। लिहाजा मुझे उतना मेरी ज़्यादा तवक्कात इससे नहीं है कि अक़्वाम मुत्तहिदा में ही कोई ऐसा उसमें कोई ऐसी इस्लाह हो कि वहाँ वो सही जमहूरी और अदल इंसाफ दिलाने वाला कोई इदारा बने, इसलिए कि उस पर जो हावी क़ुव्वतें हैं और जिन क़ुव्वतों ने उसको इन द फर्स्ट प्लेस बनाया है, वो क़ुव्वतें इसकी इजाज़त नहीं देंगी कि दुनिया में एक मसावात का और इक्वालिटी का एक सिस्टम, अदल इंसाफ का एक सिस्टम कायम हो। तो मेरी तो ज़्यादा गुजारिश ये है, मेरी ज़्यादा यानी मैं ये समझता हूँ कि अब वो दौर आ गया है कि दुनिया का निज़ाम ही तब्दील हो रहा है और दुनिया के इदारे भी इंशाल्लाह उसी से तब्दील होंगे। शायद वो अल्लामा इकबाल ने जो बात कही थी कि तहरान अगर बन जाए आलम मशरक़ का जनीवा, शायद कि कुर्रे अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। तो शायद मुमकिन है हम एक नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं और नए इदारों की तरफ शायद हम जा रहे हैं।
अक़्वाम मुत्तहिदा के बारे में ईरान के साथ डॉक्टर महमूद अहमदी नजाद ने न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद ये कहा है कि अक़्वाम मुत्तहिदा मौजूदा सूरत हाल में मौजूदा ढांचे के साथ ये अक़्वाम आलम का नुमाइंदा इदारा नहीं रहा। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
जी ये सही बात है, मैंने ये पढ़ा उनका जो स्टेटमेंट है
जी।
ये इसलिए सही बात है कि अक़्वाम आलम का ये इसलिए इदारा नहीं रहा कि जो अक़्वाम आलम के मसाइल हैं उन पर यहाँ कोई एम्फेसिस नहीं है, यानी उन पर कोई उसके उन पर कोई तश्वीश कोई फिक्र लाहक नहीं है, बल्कि जो मखसूस कुव्वतों के जो मसाइल हैं, मसलन आप देखें कि इस वक्त एक सिचुएशन बहरान में है, एक सिचुएशन शाम में है। आप देखें कि अक़्वाम मुत्तहिदा में कितना ज़्यादा एक्टिविज्म और फ़ालियत शाम के मसले पे है और बहरान के मसले पे कितनी चुप है, कितनी मुजरमाना चुप है। तो लिहाजा ये एक साफ कोई भी शख्स देख सकता है कि जहाँ इन वीटो पावर्स के, जहाँ इस्तेमार के, खुसूसन अमेरिका के जो मफादात हैं, जहाँ पर उसके मफादात हैं उसका जिक्र होता है, लेकिन जहाँ पर उसका मफाद नहीं है या जहाँ पर उसका मफाद कुछ और है तो उसके बारे में चुप साध दी जाती है। तो उस एतबार से ये एक रिप्रेजेंटेटिव इदारा अब नहीं रहा है। इसने इसराइल के बारे में जितनी करारदादें हैं वो भी नाफिज नहीं हुई, कश्मीर के बारे में कितनी करारदादें हैं वो भी इंडिया ने नाफिज नहीं की। तो इस एतबार से इसने जितनी करारदादें भी जो सिक्योरिटी काउंसिल ने भी पास की वो करारदादें भी ऐसी पड़ी हैं, वो भी पास नहीं हुई। लेकिन इराक में आप देखिए कितनी जल्दी करारदादें बनाई गई और इराक पे हमला किया गया। आज से कुछ साल जो पहले जब अमेरिका ने इराक पे सदाम हुसैन के वक्त हमला किया तो इसी बिना पर हमला किया कि अक़्वाम मुत्तहिदा की करारदाद है। हालांकि अक़्वाम मुत्तहिदा की करारदादें देखिए आप कितने दूसरे मसाइल के सिलसिले में हैं, उन पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इराक में कितनी फौजकशी हुई और वो इसी बिना पर कि अक़्वाम मुत्तहिदा की करारदाद है। तो उस एतबार से ये सही सदर अहमदी नजाद ने सही बात कही कि ये अब तमाम लोगों का इदारा नहीं रहा है, कुछ इस पे इजारादारी है और उन्हीं के मफाद को ये सर्व कर रहा है।
अंदराबी साहब, अक़्वाम मुत्तहिदा दूसरी आलमी जंग के फातह ताकतों के मफादात के तहफ़ के लिए वजूद में आया था या अक़्वाम आलम के मफादात के तहफ़ के लिए और आलमी मसाइल को मुनसिफाना तौर पर निपटाने के लिए?
नहीं, मैंने ये पहले भी गुजारिश की, ये एक पॉलिटिकल ऑर्डर जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कायम हुआ और जिसमें अमेरिका की बालादस्ती थी और उस वक्त काफी सालों के लिए सोवियत यूनियन भी था, यानी अमेरिका का एक हम पल्ला उसका उसका एक राइवल मुल्क, तो वो फातह कुव्वतें जो थी उनको उनके लिए जरूरी था कि वो दुनिया में अपनी इजारादारी को इंस्टीट्यूशनलाइज करें, यानी इदारों के जरिए इसको यकीनी बनाएं। तो उन्होंने कई इदारे बनाए, अक्वामे मुत्तहिदा बना, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, और कई यूनिवर्सल चीजें हैं जो इस बात के लिए हैं कि दुनिया में अपनी इजारादारी कायम हो। तो इजारादारी जो है वो सिर्फ फौज किसी से नहीं होती, वो इदारों के जरिए, और इदारों के जरिए एक मखसूस एजेंडा को सामने लाकर। मसलन मैं इस जमन में आपको ह्यूमन राइट्स की मिसाल दूंगा, या ह्यूमन राइट्स का जो एजेंडा है वेस्ट का, वो बेसिकली यानी उसमें कितनी ही ऐसी बातें हों जिनसे हम और आप इत्फाक करेंगे, लेकिन बेसिकली वो एक यूनिवर्सल रेजिम है जो जो यहाँ इस्तेमाली कुव्वतें अमेरिका और दीगर जो यहाँ यूरोप की इंडस्ट्रियलाइज्ड जो मगरब का इस्तेमाल मगरबी इस्तेमाली कुव्वतें जो हैं, तो ये लोगों पर और अकवाम पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए उसका इस्तेमाल करती हैं। एक यूनिवर्सल रेजीम वो बनाया गया है। अभी ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक से अभी जनीवा में एक इजलास 10 सितंबर से शुरू हुआ है, 30 सितंबर तक वो चलेगा। तो आप देखिए कि वहां भी ऐसे लोग, वहां ईरान से लोग आते हैं, ईरान से वो लोग जिनको मावनत हासिल है मगरिब की, और वो वहां अपने इंसानी हकूक की बात करते हैं, हालांकि ऐसा मसला ही नहीं है ईरान में। तो ये चीजें हैं, यानी इदारों के जरिए, एजेंडाज के जरिए दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना, ये इसके पीछे असल असल मकसद था। इसके वर्ल्ड वॉर सेकंड तो आपको मालूम है कितना कुछ तो खून और कितना कितना जो है वो खून बहाया गया। लिहाजा वर्ल्ड वॉर सेकंड के फातहीन के लिए अदल इंसाफ तो कोई मसला नहीं था, अपना कंट्रोल जमाना और कायम रखना, अपना कंट्रोल कायम रखना ये बहुत बड़ी चीज होती है। कंट्रोल कायम नहीं रहता है जब तक कि आप उसके लिए कोई परमानेंट अरेंजमेंट ना करें। तो अरेंजमेंट्स में से यूएन भी एक अरेंजमेंट था कि यूएन एक ऐसा इदारा बनाया जाए जिससे कि एक पॉलिटिकल ऑर्डर को सस्टेन किया जाए। अब कुछ वक्त से ये महसूस किया जा रहा है, अमेरिका ये महसूस कर रहा है कि अक्वामे मुत्तहिदा शायद हमेशा उसके लिए जो है वो उसके लिए रास्ता फराहम नहीं कर रहा है, कुछ मुश्किलात हैं। तो उन्होंने अब वो G7, G8 के ऐसे फोरम्स बनाए हैं कि जो कभी वो अक्वामे मुत्तहिदा को साइडलाइन करके, मसलन उनने जो अफगानिस्तान में कार्रवाई की, अफगानिस्तान को साइड ये यूनाइटेड नेशंस को साइडलाइन करके की, तो कभी उनको ऐसा लगता है कि अब अक्वामे मुत्तहिदा को भी साइडलाइन करने की जरूरत है और वो खुद G7 और G8 जैसे इदारों के जरिए काम करते हैं। लेकिन मैं आपकी यानी आप जो पूछ रहे हैं, तो मेरा जवाब यही होगा कि उस वक्त जो फातहीन थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के, उनके लिए अदल इंसाफ कोई मसला नहीं था, उनके लिए अपनी इजारादारी को कायम रखना था, और अक्वामे मुत्तहिदा उसी सिलसिले की एक कड़ी है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारा राबिता बरकरार हुआ है बर्रे सग़ीर के मुमताज़ तज़िया निगार नज़ीर नाजी साहब से। नज़ीर नाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जनाब, अक़वामे मुत्तहिदा का क़याम आपके ख्याल में फातह ताकतों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमल में आया था, या अक़वामे आलम के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी मसाइल के मुनसिफाना हल के लिए?
मेरा ख्याल है इस मौजू पर
जी
जो भी हकायक हैं और जो सूरत हाल है उसकी तफसील बयान कर चुके हैं मेरे पेशरो
जी
मुकर्रर, और मैं उनसे इत्तेफाक करूंगा कि सब कुछ इसी लिए हुआ है। लेकिन मैं इसकी ये दूसरी बात ये करूंगा कि
जी
ये किसको मालूम नहीं कि ये इस्तेमारी ताकतों ने, जिन्होंने पहले लीग ऑफ नेशंस बनाई थी वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, उसको नामुकम्मल देखते हुए, उसको गैर मुअसर देखते हुए एक नए तवाज़ुन ताकत की रोशनी में अपने एक क्लब तैयार की थी जिसको वो कोई इंटरनेशनल फोरा का नाम दे सके और उसके जरिए से अपने एजेंडे को दुनिया को बदवा सके, ये कहते हुए कि ये आलमी राय आवा की मर्जी है। हालांकि होती उन्हीं की मर्जी है, आलमी राय आवा तो बेचारी मुख्तलिफ ताकतों के जरिए असर होती है और जहां जहां जैसे जैसे उन ताकतों के मुफादात होते हैं उनके तहत वो इजहार राय करती है। तो ये चीज हमें पहले जान लेना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल कोई इंसाफ का मरकज नहीं है, बिल्कुल कहीं वो किसी की मज़लूम की मदद या किसी जरूरतमंद की या किसी पाबंद की मदद नहीं करती, किसी गुलाम की मदद नहीं करती, किसी को विट्रे से नहीं बचाती। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इंटरनेशनल ताकतों के दरमियान जो एक तवाज़ुन वो अपने अपने मफादात की रोशनी में पैदा करते हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम उसके लिए इस्तेमाल हो जाता है बाइलेटरल डायलॉग के बजाय। ये है उसका मकसद। अब इसके बाद के हम कहेंगे इसकी जरूरत क्या है
जी?
तो इसकी जरूरत पर तो बेशुमार मरतबा हुआ भी है और खास तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड को अपना शिकायत रही है, हमेशा से रही है, आज भी है। यही वजह है कि एक मौके पर जब सुकारो जिंदा थे, दासिर जिंदा थे और वो आपके बेला जिंदा थे, तो इन लोगों ने जो कि उस जमाने में आजादी पसंद मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं का दौर था, तो उन्होंने अपनी एक मुस्लिम यूनाइटेड नेशंस बनाने की कोशिश की थी जिस पर एक काहिरा में पहली इब्तदाई मीटिंग में वज़राए खारजा की हुई, लेकिन उस पर अलजीरा का तख्ता उलट दिया गया, सरकार हो गई, ऐसी तेजी हो गई, वो उसके बाद ऐसा बिखर गया कि दोबारा ये तस्वुर के मुसलमान मुल्क अपना एक एजेंडा बनाए, उसके तहत अपनी एक तरजीब बनाए, वो तरजीब अक़वाम मुत्तहिदा में एक बैलिस्टिक फोर्स के तौर पे अपना रोल करे, वो नहीं हो सका। और उसके बाद तो ऐसा हुआ कि किसी भी ऐसे मुस्लिम ग्रुप को वार्ज वजूद ही नहीं आने दिया गया जो यूनाइटेड नेशंस ने अपना को बैलेंस बनाए या को मुतबादल यूएन जो है मजबूर मुल्कों की छोटी ताकतों की बनाकर सामने आए। अब जो कुछ भी दस्तियाब है वो यही यूएन है जिस पर गलबा है अमेरिका का और उसके हवारियों का, इसी के अंदर रह के जो थोड़ी बहुत आवाज उठाई जा सकती है वही उठा रहे हैं लोग और उसकी का वो जैसे मतलब ईरान जैसा इंकलाबी मुल्क भी है, उसके सदर भी वहां जाके तकरीर तो करते हैं, अपनी बात तो पहुंचा देते हैं दुनिया तक, लेकिन इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता। तो जैसे हम कहते हैं कि दुनिया में डेमोक्रेसी कोई अच्छा सिस्टम नहीं है, ये बहुत बुरा निजाम है, लेकिन इससे अच्छा कोई है भी नहीं। इसी तर्ज पर मैं ये कह सकता हूं कि यूएन बेशक आलमी इंसाफ फराहम करने के लिए कोई मौसर अदारा नहीं है, लेकिन मजलूमों की आवाज यहाँ उठा दी जाती है, ये मजलूमों का आवाज उठाने का मौका मिल जाता है, वो शामिल चले जाते हैं, फलस्तीन के नुमाइंदे चले जाते हैं, तो यही बहुत है कि उनकी सुनी जाती है, लेकिन इससे बेहतर इदारों की गुंजाइश है। और कभी दुनिया इंसाफ की तरफ गई तो जाहिर है कि वो कोई नई अक़वामे मुत्तहिदा भी अपनी बनाएगी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया नाजी साहब, लाइन पर रहिएगा। और नाज़रीन दिल्ली स्टूडियो में हिंदुस्तान के सीनियर तज़िया निगार मोहम्मद अहमद काज़मी साहब मौजूद हैं। काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
काज़मी साहब, जनरल असेंबली का इजलास मंगल से शुरू हो गया है, जनरल असेंबली के इजलासों की अहमियत क्या है?
जनरल असेंबली के इजलास वैसे तो बैन अल-अक़वामी सतह पर जो हालात होते हैं उस पर तबादले ख्याल का एक अच्छा फोरम है, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में जो कुछ हो रहा है उस पर मुख्तलिफ मुल्कों की राय सामने आ जाती है। इस बार जो जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है उसकी अहमियत इसलिए है कि मशरिक वस्ता और शुमाली अफ्रीका में जो तब्दीलियां आ रही हैं और उन तब्दीलियों के नतीजे में अमरीका और इसराइल कमजोर हो रहा है, और दूसरी तरफ वो फिलिस्तीन की वो तंजीम जो बहुत ही खामोश और मगरबी मुल्कों के साथ समझी जाती थी, जिसके रहनुमा अबू माजिन हैं, वो भी फिलिस्तीन के सिलसिले में एक तहरीक ला रहे हैं। तो इस नई तब्दीली में बहरहाल इन मुल्कों को, इसराइल और अमेरिका को नई परेशानियों का सामना है, और ऐसे वक्त में ये लोग फिलिस्तीन के सिलसिले में जो मौकिफ इख्तियार किए हैं उससे बहरहाल दुनिया में मजीद नाराजगी बढ़ेगी, और मैं समझता हूं कि अमेरिका और इसराइल और तनहा होंगे। और जैसा कि अब से पहले भी होता रहा है, जनरल असेंबली में ईरान के सदर महमूद अहमदीनेजाद की तकरीर सबसे ज्यादा दिलचस्पी से सुनी जाती है, और बैनुल अक्वामी मीडिया में भी मैं समझता हूं अमेरिका के सदर से भी ज्यादा ईरान के सदर को कवरेज मिलती है। ये सब अब भी होने जा रहा है, और जो हकायक हैं वो बयान किए जाएंगे, और इससे अलावा कोई खास इसकी अहमियत मुझे नहीं लगती।
जी बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब। नजीर नाजी साहब, जी काजमी साहब, इस साल जो इजलास हो रहा है इसमें जाहिर है जैसा कि आपने इशारा किया है कि मशरक़ वस्ता और शिमाली अफ्रीका के हालात के पेश नज़र इजलास ज़्यादा अहमियत का हामिल है, तो आप क्या समझते हैं कि ये हालात इजलास पर हावी रहेंगे?
बेशक अमेरिका अपने तरीके से लीबिया में नेटो की जीत के बारे में अपनी बात कहेगा, लेकिन मैं समझता हूं ईरान और उसके दोस्त ममालिक बहरेन में जो अमेरिका का दोहरा रवैया है, और यमन में हुकूमत को अब भी बाकी रखने की कोशिश की जा रही है अली अब्दुल्ला साले की हुकूमत को, तो ये चीजें जरूर सामने आएंगी। और मैं समझता हूं जो अमेरिका का और इसराइल का और खासतौर पे उनके इलाकाई इत्तेहादियों का जो दोहरा मेयार इस अवामी और इस्लामी तहरीकों के खिलाफ है, वो मैं समझता हूं वो जरूर अवाम के और दुनिया के सामने आएगा।
जी काजमी साहब, एक सवाल मैं और करना चाहूंगा। अभी अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने इजलास से खिताब में कहा है कि ये मुमकिन नहीं है कि दुनिया में जहां भी बेअदालती और जुल्म हो अमेरिका वहां मुदाखलत करे। उनके इस बयान को अगर मशरक वस्ता और शिमाली अफ्रीका के तनाजुर में देखा जाए तो आप क्या कहेंगे?
वो जाहिर है बराक ओबामा ने अपने पॉलिसीज के, अपने जो खारजा पॉलिसी है उसमें जो दोहरापन है उसको छुपाने के लिए या उसके एतराफ में ये बात कही है। मैं समझता हूं इससे घटिया बात नहीं हो सकती कि अपने आप को सुपर पावर समझने वाला मुल्क, उसका सदर ये कहे कि दुनिया में जहां जहां भी जुल्म हो हम वहां नहीं जा सकते, यानी हम शाम में मुदाखलत कर सकते हैं, यानी हम बहरेन में मुदाखलत नहीं कर सकते, यानी हम यमन में अली अब्दुल्ला साले को बाकी रखना चाहते हैं, यानी ये एक तरह से अपने जो दोहरे मेयार हैं उनका एतराफ है ये।
डॉक्टर अंद्राबी साहब, जनाब आप क्या कहते हैं बाराक ओबामा के इस बयान पर? इससे पहले भी एक बार उनसे किसी सहाफी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि दुनिया में और भी मुल्कों में अवाम सड़कों पर आए हैं, बेअदालती के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आप उनकी हिमायत क्यों नहीं करते? तो उनका जवाब ये था कि जहां हमारा इंटरेस्ट होगा वहां हम मुदाखलत करेंगे, और जहां हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा वहां हम मुदाखलत नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी हालिया तकरीर में जनरल असेंबली में जो ये बात कही है कि न ये मुमकिन है और न ये होना चाहिए कि जहां भी बेअदालती हो अमरीका वहां मुदाखलत करे।
जी असल में अमेरिका को कोई नहीं कहता कि आप मुदाखलत करें, यानी आप हमें बचाएं। सिर्फ बेनगाजी में एक सिचुएशन हुई थी जहां ये लग रहा था कि शायद शायद मुअम्मर कजाफी वहां पे लोगों पे टूट पड़ेंगे, जुल्म होगा, तो कुछ वहां पे नेटो ने मुदाखलत की। और ये तो एक यानी ये जितना हम समझ सके, जितना हम देख सके, ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद ये मुदाखलत सही वक्त पे हो गई और वहाँ लोगों पे, वरना मालूम नहीं क्या किया जाता। लेकिन इसके बावजूद भी नेटो के और उनके जो अपने मकासद हैं वो किसी से ढके
नहीं साहब,
है।
एक सवाल मैं आपसे और
वो
करूंगा,
खुद
जवाब
वहाँ जो
इख्तसार के साथ चाहूंगा,
जो इंकलाबी लोग हैं उनसे भी ढके छुपे नहीं है।
जी जवाब मुख्तसर चाहूंगा, अमेरिका ने अब तक
जी
जुल्म और
तो,
बेअदालती के खिलाफ
तो,
कहां मुदाखलत की है?
जी जी मुख्तसर जी जी मैं ये आप मेरा ये जवाब होगा कि हम चाहते हैं कि अमेरिका मनफी मुदाखलत ना करे। मतलब यमन का जब जिक्र आया तो यमन में अगर इस वक्त मुदाखलत ना हो तो अली अब्दुल्ला सालेह खुद यमन में है भी नहीं, तो वहां लोग सड़कों पे हैं। अगर उनको ऐसे ही रहने दिया जाए तो यमन में काफी कुछ तब्दीली हो सकती है अगर अमेरिका अपनी मनफी मुदाखलत ना करे, अगर अमेरिका वहां एक वहां की डिक्टेटरशिप को ना बचाए। तो अमेरिका से हम यही चाहते हैं कि वो मनफी मुदाखलतें ना करें, और हम नहीं चाहते कि जहां पे भी कुछ हो अमेरिका वहां आए। हम यही
बहुत
कहते
बहुत
हैं कि आप मनफी मुदाखलत ना करें।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं इस वक्त सियासी और स्ट्रेटेजिक उमूर के माहिर अहमद रोशन फिक्र राज साहब। राज साहब, जनरल असम्बली के मौजूदा इजलास की अहमियत क्या है?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सازمان ملل هر سال که مجمع عمومی تشکیل میشه یک سری مسائل عادی خودش داشت.
اقوام متحدہ کا ہر سال یہ اجلاس ہوتا ہے جنرل اسمبلی کا، لیکن اس بار علاقے میں اسلامی بیداری کا دور ہے اور ایسے حالات میں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ یہ بیداری، اسلامی بیداری جو ہے، تین اس کے پہلو ہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اقوام متحدہ کو اس وقت لیبیا، بحرین، یمن اور مصر اور تیونس کے حالات کا سامنا ہے، تو یہاں جو مسائل ہیں، دیکھیں اقوام متحدہ کے تو یوں مسائل ہوتے ہی ہیں جو ہر سال جنرل اسمبلی میں پیش کیا جاتے ہیں، توانائی کے بحران اور انسانی حقوق کے سلسلے میں، لیکن اس بار یہ جو مسائل ہیں یہ بالکل الگ سے ہیں۔ تو جو اس سلسلے میں جیسا کہ کہہ رہے تھے کہ جو مداخلتیں ہوتی ہیں اصل میں ان تبدیلیوں میں، امریکہ کی طرف سے یا مغرب کی طرف سے جو مداخلتیں ہوتی ہیں، اس سے ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے کہ ان بیداریوں کے لیے اور خاص اقوام متحدہ کے سامنے ایسے چیلنجز پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس سے بہت ہی غیر متوقع مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ جو علاقائی بیداری ہے اور جس کے تحت عوام نے اپنی خود مختاری اور آزادی کے لیے اقدام کیا ہے، تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے ایسی مثالیں ملتی ہیں جن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ جو ایک عالمی ادارہ ہے، اس کے باوجود اس نے وہ کارکردگی نہیں دکھائی جو اسے دکھانی چاہیے تھی، یعنی ایسے کام نہیں کیے۔ اقوام عالم نے جب اس کی طرف امید لگائی، اس سے امید لگائی، تو امیدیں پوری نہیں کی اقوام متحدہ نے۔ مثال کے طور پر ہم دوسری سب چیزوں کو چھوڑ دیں، اگر مالی بحران میں یہ دیکھیں، دیکھیں آپ مالی بحران کا مسئلہ دیکھیں، مالی بحران کا جو مسئلہ، اس میں اپنے مالی بحران کو حل کرنے کے لیے بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اقوام متحدہ کا سہارا لے رہی ہیں، حالانکہ تیسری دنیا کے جو ممالک ان کے لیے بہت زیادہ یہ مسئلہ نہیں، لیکن اس کا بوجھ انہیں بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرے جو مسائل ہیں، عالمی مسائل ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ مختلف بحرانوں اور مختلف مسائل کا حل نہیں کر پایا، جیسے آئی ایم ایف ہے یا جو مالی بحران ہے، جہاں تک نسلی امتیاز کی بات ہے، جہاں تک انسانی حقوق کی بات ہے، یہ سارے جو مسائل ہیں، اس میں سارے مسائل جو ہیں وہ سارے دباؤ جو ہیں وہ تیسری دنیا کے ممالک پر ڈالے جاتے ہیں اقوام متحدہ کی طرف سے، اور اس معاملے میں اس طرح سے کارکردگی نہیں ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ فلسطین کا ہے، فلسطینیوں نے خود مختار فلسطینی ملک کی تشکیل کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ، اور بہرحال کچھ ممالک اس کے مخالف ہیں، کچھ موافق ہیں، تو اس یہ مسئلہ بھی جنرل اسمبلی میں پیش ہوگا، اور اس میں اسے رکنیت دینے کے بارے میں غور کیا جائے گا، یہ بھی اس دفعہ جنرل اسمبلی میں مسئلہ غور آئے گا، یا اسی طرح زیر غور آئے گا۔ اسی طرح جو ہے افریقی یونین کے بہت سے مسائل ہیں متعلق، جو بھی زیر غور آئیں گے، جیسے قذافی کا جو معاملہ ہے، وہ افریقی یونین نے قذافی کو تسلیم کیا تھا اور تائید کی تھی، تو بہرحال بہت سارے امور ہیں جو افریقی یونین کی طرف سے پیش کیے جائیں گے، ادھر یوروپ کی طرف سے نیٹو اور بھی دوسرے مسائل ہیں جو پیش کیے جائیں گے، تو اس طرح کے بہت سارے امور ہیں جن پر جنرل اسمبلی میں بحث ہوگی۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے مسائل، یعنی اس لحاظ سے کہ جزوی مسائل، کہ جیسے ماحولیات کا مسئلہ ہے، ان سب پر بھی غور کیا جائے گا۔
ہماری جاری رہے گی۔ کاظمی صاحب، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟
جی
جی کاظمی صاحب، یہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے حالات،
جی فرمائیے۔
تو بہرحال اجلاس
جی پر جی پہنچ رہی ہے، مجھے
اثر انداز ہو رہے ہیں، اور امریکی صدر باراک اوباما کی تقریر کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ نہ ہمارے لیے ممکن ہے اور نہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ دنیا میں جہاں بھی بے عدالتی اور ظلم ہو ہم وہاں مداخلت کریں۔ اندرابی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ امریکہ اگر مداخلت نہ کرے تو خطے میں جو عوامی تحریکیں جاری ہیں وہ بہت صحیح انداز میں اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جواب ہمیں مختصر چاہیے۔
اپنی جگہ قطعی غیر ضروری ہے، وہاں کی عوام اپنے قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے سڑکوں پر ہیں، اور امریکہ جب مداخلت کرتا ہے وہ اپنے مفادات، جو وہاں اس کے مفادات ہوتے ہیں، اس کے لیے کام کرتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کی مداخلت ان ممالک میں یہاں رونما ہونے والے اسلامی بیداری کے جو انقلاب ہیں ان میں اس کا کوئی مثبت کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ محض عوامی انقلاب کو پٹری سے اتارنے کی کوشش ہوگی، اور امریکہ نے جو کچھ قبول کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ سبھی جگہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے مداخلت کرنا، تو یہ بہرحال اس کے اپنے دوہرے معیار کا اعتراف ہے، اور عوام کو قطعی امریکہ کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارے لندن کے ساتھی نے کہا کہ مثبت مداخلت اور منفی مداخلت، تو وہ وہاں کے ماحول سے، وہاں کے میڈیا سے وہ متاثر ہیں میں سمجھتا ہوں، اسی لیے انہوں نے اس قسم کی نئی ٹرم ایجاد کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں مداخلت بہرحال منفی ہوتی ہے۔
بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ روشن فکر راج صاحب، امریکی صدر باراک اوباما نے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کہ دنیا میں جہاں بھی بے عدالتی اور ظلم ہو ہم وہاں مداخلت کریں. ان کے اس بیان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
ببینید یہ حرف جالبی زده ایشون. حاکمیت آمریکا
دیکھیے انہوں نے اپنی تقریر میں ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے. دیکھیں اصل میں امریکہ کی جو پس پردہ حکومت ہے وہ تمام فیصلوں کے پیچھے ہوتی ہے. خفیہ ایجنسیاں جو ہیں اور جو اس طرح کی ساری ایجنسیاں ہیں, تو یہ اوباما صاحب جو آئے تھے, اوباما صاحب یہ چینج اور تبدیلی کا دعویٰ کرتے ہوئے آئے تھے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ مداخلت نہیں کر سکتے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ مداخلت نہ کرے, اور اگر اس طرح کا وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. لیکن بہرحال ایک بات ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ دیکھتے ہیں ہم بظاہر کہ بہت سے امور پر بہت سے معاملات میں وہ مداخلت نہیں کرتا ہے امریکہ, لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تنظیمیں آتی ہیں, کچھ گروہ آتے ہیں, وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ امریکہ مداخلت کرے, امریکہ مداخلت کرے, اور ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گروہ ان کا تعلق بھی امریکہ سے ہے. تو اس طرح سے امریکہ اپنے سے وابستہ تنظیموں سے اور گروہوں سے مطالبہ کرواتا ہے مداخلت کا, اور پھر کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہم مداخلت نہیں کرنا چاہتے, لیکن اب یہ مطالبہ ہو رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مداخلت کی جو بات انہوں نے کہی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے مراد وہ ہے کہ حقوق اقوام کے نہ ادا کریں, یہ اس کا مطلب عدم مداخلت ہے یا کیا ہے؟ تو اس لیے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جہاں پر اقوام کا فائدہ ہوتا ہے, جہاں پر عوام کا فائدہ ہوتا ہے وہاں مداخلت نہیں کرتے, اور جہاں عوام کا نقصان ہوتا ہے وہاں مداخلت کرتے ہیں. تو اس لیے اس بات پر غور ہونا چاہیے کہ یہ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل بات جو ہے وہ امریکی مفادات ہیں, اور مفادات جو ہیں دیگر ممالک میں لوٹ مار اور غارت گری پر مشتمل ہوتے ہیں, اور یہ مفادات جہاں پر جیسا ان کا تقاضا ہوتا ہے ویسا ہی امریکہ کرتا ہے, چاہے وہ مفادات مداخلت سے تکمیل ہوں, پورے ہوں, یا عدم مداخلت سے ہوں, یا زیادہ مداخلت سے, یا کم مداخلت سے ہو. تو یہی ہوتا ہے, امریکہ نے جہاں مداخلتیں کی ہیں وہاں کیا ہوا؟ مسلمانوں کے قتل عام کے علاوہ اور کیا ہوا؟ گزشتہ حکومت بہت سارے معاملات ہیں جس میں امریکہ کا مداخلت کی کوئی بات نہیں تھی, یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے امریکن مداخلت نہیں کہا جا رہا تھا, لیکن جب تحقیق ہوئی اور آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے مداخلت کی, اور بہت ہی بری طرح سے مداخلت کی. تو ابھی فی الحال جو صورتحال اس میں باراک اوباما انتخابات میں جو ہے منتخبات میں مصروف ہیں.
بہت شکریہ روشن فکر راج صاحب. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی, محمد احمد کاظمی اور نذیر ناجی کے بھی شکر گزار ہیں. بہرحال اس میں دو رائے نہیں کہ امریکی صدر باراک اوباما نے جو یہ کہا ہے کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر جگہ مداخلت کرے, تو ہر جگہ ان کو مداخلت کرنے کا حق بھی نہیں ہے, اور دنیا کی کسی بھی قوم نے ان سے مداخلت کا مطالبہ نہیں کیا ہے. اور ظاہر ہے یہ تو دنیا پر واضح ہے کہ امریکہ جہاں بھی مداخلت کرتا ہے اپنے سامراجی مفادات کے تحفظ کے لیے کرتا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ.